हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आदित्य और सुनैना बंगले में उसी गुप्त स्थान पर बने बेडरूम के बड़ी सफ़ेद बिस्तर पर लेटे थे। बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछी थी और कमरे की अधिकांश चीज़ें सफ़ेद रंग की थीं। सुनैना आदित्य की कमर में हाथ डाले सिर उसके सीने पर रखे लेटी हुई थी। दोनों को नींद नहीं आ रही थी, पर एक दूसरे के साथ उन्हें सुकून मिल रहा था। तभी सुनैना ने आसपास की चीज़ें ध्यान से देखते हुए आदित्य की ओर देखे बिना पूछा, आदि एक सवाल पूछूं? हाँ सोना, तुम कुछ भी पूछो, पहले से अनुमति क्यों लेटी हो? आदित्य ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। आदित्य के ऐसा करने पर सुनैना ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और नज़र उठाकर आदित्य की ओर देखते हुए बोली, यहाँ की सारी चीज़ें सफ़ेद क्यों हैं? जहाँ तक मुझे पता है, छिपने के लिए लोग किसी अंधेरे स्थान का उपयोग करते हैं, तो फिर ये? आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारे आने से पहले तक मेरी ज़िंदगी अंधेरे से भरी रही है। मुझे अपने आसपास हर जगह रोशनी और उजाला पसंद है, लेकिन फिर भी मैं उसमें रह नहीं पाता। इसलिए मैंने इस जगह को पूरी तरह सफ़ेद डिज़ाइन करवाया है। सफ़ेद जगह होने की वजह से अकेले होने पर भी यहाँ डर नहीं लगता। सुनैना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, अच्छा, तो क्या अंधेरे में तुम्हें डर लगता है? आदित्य ने अपनी उंगलियां सुनैना की उंगलियों में फंसाते हुए कहा, नहीं, अब नहीं लगता। मतलब पहले लगता था, जब तुम वहां पर नहीं होती थी ना, मेरा हाथ थामने के लिए। सुनैना ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपनी उंगलियों में कसकर जकड़ लिया और कहा, ओ वाओ, मुझे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी, पर सुनकर बहुत अच्छा लगा। और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। इतना बोलते हुए सुनैना ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। आदित्य ने भी सिर हिलाकर मुस्कुराया और फिर उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए उसके होठों पर हल्का सा चुंबन कर लिया। सुनैना फिर उसी तरह उसे पकड़कर लेट गई। अक्षत स्वीटी और नैना को लेकर अपने घर वापस आ गया था। अजय भी वहाँ पर था। उसने पहले से ही वहाँ पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करवाया था। स्वीटी और नैना को घर के अंदर जाने के लिए कहकर वह अजय और सुरक्षाकर्मियों से बात कर रहा था। तभी अजय ने अक्षत को बताया, बहुत ही बुरा हादसा हुआ है मिस्टर आदित्य सिंघानिया का। पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ उनका ड्राइवर कार में था, लेकिन बाद में पता चला है कि मिस्टर आदित्य सिंघानिया भी ड्राइवर के साथ उसी कार में थे जब हादसा हुआ। उनकी हालत भी काफ़ी खराब है, लेकिन उनकी कंपनी के लोग इस बात को छिपाना चाहते हैं, जिससे उनके प्रतिद्वंद्वी इसका फ़ायदा न उठा सकें। हादसे की बात सुनकर अक्षत ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ओ माय गॉड, आदित्य का इतना बड़ा हादसा! क्या तुम लोगों को पता चल पाया है कि वो किस अस्पताल में है? उसका इलाज कहाँ चल रहा है? उसे कितनी चोट आई है? वो गंभीर तो नहीं है ना? अजय ने सिर झुकाकर माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, इतनी डिटेल में कुछ भी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि वे लोग अपनी तरफ से हर चीज़ को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी कंपनी के लिए सही भी है। लेकिन फिर भी मैं अपने सूत्रों से पता लगाने की कोशिश करता हूँ, जो भी पता चल पाए। अक्षत ने एकदम गंभीर आवाज़ में आदेश दिया, जैसे ही कुछ भी पता चले मुझे बताना, और हाँ, ये हादसा सच में हादसा है या फिर किसी की साजिश, ये भी पता करो और मुझे बताओ इसके पीछे कौन हो सकता है। साथ ही आदित्य के घर के आसपास भी नज़र रखना। अक्षत के आदेश सुनकर अजय वहाँ से सभी सुरक्षाकर्मियों को निर्देश देने चला गया। अक्षत गहरी सांस लेते हुए घर के अंदर आया, क्योंकि उसे घर के अंदर आकर नैना से भी सामना करना था और उसे पता था कि नैना उससे बहुत नाराज़ है। अक्षत अपने बंगले के हॉल में आया, जहाँ स्वीटी और नैना धीमी आवाज़ में कुछ बात कर रहे थे जो अक्षत को बिल्कुल नहीं सुनाई दी। जैसे ही दोनों की नज़र अक्षत पर पड़ी, दोनों लड़कियाँ चुप हो गईं और सीधे होकर अपनी जगह पर बैठ गईं। स्वीटी को ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। अपनी ज़िंदगी में पहली बार वो किसी ऐसे एक्टर के घर पर बैठी हुई थी जिसे उसने अब तक सिर्फ फिल्मों और टीवी पर ही देखा था। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इस बात को मनाए या उत्साहित हो। फिर भी अक्षत को आता देख वो सीधे होकर बैठ गई। उसके चेहरे पर थोड़ा तनाव साफ दिख रहा था। नैना, सुनैना और आदित्य के लिए परेशान थी, लेकिन पिछली रात की बातें उसे भूली नहीं थीं। अक्षत भी वहां आया और उनके सामने हॉल में बैठ गया। फिर नौकरानी आई तो अक्षत ने सबके लिए कुछ लाने को कहा। उसे पता था कि नैना को ब्लैक कॉफ़ी पसंद है, इसलिए उसने उसके लिए बुलाने को कहा और स्वीटी के लिए बिना पूछे ही हॉट चॉकलेट मंगवा ली। स्वीटी ने कुछ नहीं कहा। अक्षत ने भी कॉफ़ी बनाने को कहा। सबके लिए कॉफ़ी बनाने का आदेश लेकर नौकरानी चली गई। उसके जाने के बाद वहां फिर से अजीब सा सन्नाटा छा गया। अक्षत नैना की ओर देख रहा था, उससे कुछ बोलने की सोच रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों बोल नहीं पा रहा था। शायद स्वीटी के वहां होने की वजह से या फिर नैना के गुस्से के बारे में सोचकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी वह अपनी तरफ से पूरी बात साफ करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि किसी गलतफहमी या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से उन दोनों का इतना अच्छा रिश्ता टूट जाए जो अब तक बहुत अच्छा चल रहा था। ये सब सोचते हुए अक्षत ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन नैना की शिकायत भरी नज़रों को देखकर उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। स्वीटी भी इतनी देर से अक्षत को इस तरह देख रही थी, इसलिए आखिरकार उसने अपनी जगह से उठकर कहा, मैं पानी पीकर आती हूँ। उसे असल में प्यास बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसने पानी पिया था। वो बस बहाना बना रही थी। लेकिन अक्षत का पूरा ध्यान नैना की तरफ था, इसलिए वह इस बात को समझ नहीं पाया। उसने स्वीटी को रोकते हुए कहा, अरे नहीं, कहाँ जाओगी तुम, खुद से रुको, मैं अभी मंगवा देता हूँ तुम्हारे लिए पानी। मेरे लिए पानी मंगवाने से ज्यादा बेहतर है कि आप दोनों आपस में बात कर लें, स्वीटी ने दोनों हाथ सामने बांधकर गंभीर होते हुए कहा। स्वीटी की बात सुनकर नैना ने उसकी ओर देखा। अक्षत भी समझ गया कि वह बात करने के लिए उन दोनों को अकेला छोड़ना चाहती है, इसलिए बहाना बनाकर जा रही है, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। नैना कुछ बोल पाती इससे पहले ही स्वीटी किचन की ओर चली गई, जहां उसने कुछ देर पहले नौकरानी को जाते देखा था। स्वीटी के जाते ही अक्षत को एक अच्छा मौका मिल गया। वह भी अपनी जगह से उठकर नैना की ओर आया, लेकिन नैना ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया तो अक्षत जल्दी से उस तरफ आ गया। नैना फिर दूसरी तरफ देखने लगी। अक्षत ने फिर से अपनी जगह बदली और नैना के सामने आकर खड़ा हो गया। नैना ने ये 3-4 बार किया और अक्षत हर बार उसके सामने आकर खड़ा हो जाता। फिर नैना ने चिढ़ते हुए कहा, क्या है अक्षत, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, क्यों परेशान कर रहे हो? अक्षत ने उसके चेहरे पर हाथ रखने की कोशिश करते हुए कहा, अब देखो, तुम्हें परेशान करने से तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिलहाल तुम मुझे परेशान कर रही हो, ये क्या बर्ताव है, देखो ना मेरी तरफ। नैना ने हाथ दिखाते हुए उसका हाथ वहीं रोक दिया और सवाल किया, तुम्हारी तरफ देखूं, लेकिन क्या देखूं और क्यों देखूं? नैना में इस तरह मना करने पर अक्षत ने मुट्ठी बांधकर अपना हाथ वापस ले लिया और थोड़े गुस्से में पूछा, क्या और क्यों से क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता क्या? इतना क्या बदल गया है कल की पार्टी के बाद से? और उस वक्त क्यों कहा था तुमने कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, जबकि तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? मुझसे ज्यादा तो तुम उस रागिनी की बातों पर भरोसा कर रही हो।
नैना एकदम भावहीन चेहरे के साथ बोली, हाँ, लेकिन उसने वो सब कुछ तुम्हारे सामने ही बोला और तुम उसे ठीक तरह से मना भी नहीं कर पाए, और वो जितने आत्मविश्वास से अपनी बातें बोल रही थी, साथ ही तुमने भी ये स्वीकार किया कि तुम मुझसे एक पार्टी में मिले थे और उसके बाद तुम दोनों पूरी रात साथ थे, तो फिर? नैना की ऐसी बातें सुनकर अक्षत भी गुस्से में बोला, तो फिर क्या नैना, तुम भी तो इतने दिन मुझसे दूर थी शूटिंग के लिए और वहां पर कितने ही लोग थे, तो क्या मैं भी तुम पर इस तरह का शक करूं? नैना तंज भरे लहजे में मुस्कुराती हुई बोली, वाह मिस्टर अक्षत, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आखिर हो तो तुम भी एक आदमी ही हो। अपनी गलती छिपाने के लिए लड़की के चरित्र पर सवाल उठाना तो पुरानी रीत है मर्दों की, और आज तुमने भी ये बोल दिया। अक्षत जल्दी से बात संभालते हुए बोला, अरे नहीं नैना, प्लीज, तुम मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकाल रही हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, फिर तुम चाहे जहां भी जितने दिन रहो और जिसके साथ भी। इसके अलावा अगर कोई आकर ये बोलेगा ना कि तुम प्रेग्नेंट हो या उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, फिर भी मैं उसकी बात पर भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार का मतलब ही भरोसा होता है। इसलिए जो तुम कहोगी मैं वही मानूंगा, किसी और की बात सुनकर कुछ नहीं मानूंगा। अक्षत की ऐसी बातें सुनकर नैना ने उसकी आंखों में देखा, जहां उसे सच्चाई नजर आ रही थी, और अक्षत के आंसू भी, क्योंकि वो नैना को दुखी नहीं करना चाहता था, और इसीलिए उसने अपने मन में चल रही पूरी बात बोल दी। अब इसके बाद नैना पर निर्भर था कि वो उसे समझाने का मौका देती है या नहीं। क्रमशः